हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 55 अत्यंत ही सुंदर श्लोक है भगवान श्री कृष्ण का उत्तर जो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही अद्भुत शब्द उच्चारण किए हैं। कृपया इन पवित्र और आध्यात्मिक शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। शब्दों का अर्थ देखिए। श्री भगवान उवाच, अर्थात ये जो श्लोक है वो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा प्रजहाति यानी त्याग कर। क्या त्याग देता है? यदा जब कामान यानी कि समस्त इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, काम कहते हैं जो इच्छाएं हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है ना, भोग के लिए होती है, जब मनुष्य उन समस्त इच्छाओं को त्याग देता है, कितनी कितनी क्वांटिटी में? सर्वान। भगवान ने इस बात को क्लियर किया कि एक भी नहीं रहनी चाहिए। सर्वान माना सभी प्रकार से। पार्थ, हे पार्थ, मना गतान, मनोरथ का यानी कि हृदय के अंदर मन से जो इच्छाएं उत्पन्न होती है ना, उन समस्त का परित्याग। और फिर क्या करेगा? त्याग करके क्या करेगा? आत्मन यानी आत्मनि का मतलब आत्मा की शुद्ध अवस्था में एव निश्चय ही आत्माना यानी विशुद्ध मन से। अब आत्मा को पहले आत्मा कहा है और बाद में उसी आत्मना का मतलब विशुद्ध मन बताया गया। और आगे तुष्ट है, संतुष्ट प्रसन्न हो जाता है। स्थित प्रज्ञ से यानी आध्यात्म में स्थित, तदा उस समय तब उच्यते कहा जाता है। बहुत ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के उत्तर में बहुत ही गूढ़ रहस्य बताया है स्थित प्रज्ञ कैसा होता है। तो इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हैं ताकि हम इस भगवान के अद्भुत वाक्यों को समझने का प्रयास कर सकें। तो गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करते हैं ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स्वपरान्तिकम्. वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथन् वितन्तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचनम गौरंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरि प्रिये. वाञ्छा कल्पतरु भयस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ग्रंथा श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो. द्वितीय अध्याय सांख्य योग गीता का सार. इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने पूरी श्रीमद् भगवद गीता को संक्षिप्त में वर्णन किया है, यानी कि जो जो भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग जगह अध्यायों में बताए वो सारे योग इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने संक्षिप्त में बताए हैं. तो अब भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को वेदों के विषय में बताया, जैसे भगवान बुद्धि योग के विषय में बता रहे थे और बताते बताते वेदों के अंदर आ गए कि वेद. भगवान श्री कृष्ण ने 52 में कहा यदाति मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति तदागंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य शतस्य च. इतना भगवान श्री कृष्ण ने कहा यदाति मोह कलिलम, एक घना जंगल बताया भगवान श्री कृष्ण. अब याद है ना ये घना जंगल किस चीज का है? ये घना जंगल है वेदों की अलंकारमयी शब्द. भगवान ने कहा जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अन्य मनसक हो जाओगे. यानी कि वेदों में जो अलंकारमयी मोह रूपी भाषा लिखी हुई है ना कि इसको प्राप्त करोगे तो ये मिलेगा इसको प्राप्त, जब तुम्हारा मन तुम्हारी बुद्धि उससे ऊपर हो जाएगी तरित ऋष्यति यानी कि उन सबको पार कर जाएगी, जब तुम वेद में लिखे हुए इन अलंकारमयी भाषा से प्रभावित नहीं होगे मोहग्रस्त नहीं होगे तो भगवान कहते हैं तरागंता से निर्वेदम, फिर तुम जो सुना है और जो सुनने वाले उस सबसे अन्य मनसक हो जाओगे सबसे ऊपर हो जाओगे. वास्तव में भक्तों, वेदों में 90% जो है वो कर्म कांड पे चर्चा की गई है। कर्म कांड ही वेदों का मुख्य, क्योंकि मनुष्य जीवन अब कर्म कांड से ऊपर उठाते 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 भक्ति कांड तक जब तक कोई आता है, तब तक वो यही समझता है कि जीवन का लक्ष्य केवल इंद्रिय तृप्ति है। तो भगवान कहते इससे ऊपर उठना है। भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही कहा है 2.45 हम पढ़ चुके हैं, इसको हमें याद रखना है। भगवान ने कहा त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन हुआ है, यानी मुख्यतः मतलब ज्यादातर जो वेदों का पोर्शन है 90% जो है वो सिर्फ तीन गुणों के अनुसार ही उसमें वर्णन हुआ है। और भगवान ने क्या कहा है, निस्त्रय गुणियों भवा अर्जुन, अर्जुन इन तीन गुणों से आपको ऊपर उठना है और समस्त द्वंद्वों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होना। इसी चीज को भगवान आज हमें बता रहे हैं। और आगे भगवान श्री कृष्ण ने 53 में कहा, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव चला बुद्धि तदा योगम अवाप्सी। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित नहीं होता है, यानी कि जब आप वेदों के विषय में पढ़ते हो, कुछ लोग सुनते ना बोले आप ये पूजा करो आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, ये पूजा करोगे तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, धन चाहिए तो इसकी पूजा करो, अगर है ना सुंदरता चाहिए तो ये करो। तो क्योंकि हम देहात में बुद्धि में ना, तो हमको वो बातें बहुत अट्रैक्ट करती हैं कि हाँ यही प्रॉब्लम इस तो सोल्व करनी है, प्रॉब्लम सोल्व करनी है तो फिर भक्ति करने से तो होगी नहीं, तो ये करने से तो आसानी से हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, अभी छोड़ो भक्ति भक्ति, अभी ये वेदों में लिखा है वो भी तो हम शास्त्र को मान रहे हैं ना, अभी हम भी बोलेंगे बेटे भाई के श्रुति प्रमाण जो है वही शब्द प्रमाण ही प्रमाणिक है, तो बोलेंगे भाई वेद को ही तो हम फॉलो कर रहे हैं, वेद में लिखा हुआ है इसकी पूजा करो तो बेटा पैदा होगा, इसकी पूजा करो तो अच्छा पति मिलेगा, इसकी पूजा करो तो धन मिलेगा, हम भी तो शास्त्र को फॉलो कर रहे हैं, कौन सा अपनी बात कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं करना है, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो, इधर से ऊपर उठने का है, इधर अटक के नहीं बैठना है, क्योंकि ये तो तुमको अच्छे और बुरे फलों के जो फल है ना उसके अंदर बांध देंगे, फिर आप अच्छे फल के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, बुरे फल के लिए नीचे आना पड़ेगा, ऊपर नीचे, जो आपका गोल है ना वो तो बहुत दूर होता जाएगा इससे। तो भगवान ने कहा श्रुति विपत्ति बन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थित हो जाता है, निश्चला समाधा समाधा वचला बुद्धि, बुद्धि जब समाधि में स्थित हो जाती है, सम आधि, इसका भी क्या मतलब होता है, धी कहते हैं बुद्धि को और सम का मतलब होता है एक में स्थित हो जाना, जब वन पॉइंटेड हो जाती है समाधि, यानी कि बुद्धि जो है वन पॉइंटेड हो जाती है, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। जब अर्जुन ने ये सुना कि भाई अरे बाप रे ये तो सारे वेदों वेदों को छोड़ने की बात कर रहा है, लेकिन मैं तो शिष्य हूँ, क्योंकि शिष्य तो शिष्यत्व स्वीकार किया था अर्जुन ने। अब यहाँ पर एक बात समझने की है, हम भौतिक और आध्यात्मिक में डिफरेंस है। भौतिक में क्या होता है, हम पहले पूछते हैं समझते हैं और उसके बाद उसको स्वीकार करते हैं, है ना, कोई भी चीज आपको भौतिक में चाहिए ना, फिर क्वेश्चन पूछेंगे उसके बारे में जो पूरी डिटेल, उसके बाद एक्सेप्ट करते हैं या फिर उसको है ना इनकार करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक में क्या होता है, तद्विधि प्रणिपाते ना, आपको पहले प्रणिपात करना है उसके बाद पूछना है। हाँ, अब अर्जुन ने पहले भगवान को सरेंडर कर दिया, क्या कहा भगवान को, शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्नम, कि मैं शिष्य हूँ तुम्हारी शरण में आया हूँ, अब जैसा मुझे आदेश करोगे जो मेरे लिए श्रेष्ठ कर रहे हैं वो मैं करूंगा। अब ऐसा वही भगवान को अर्जुन ने बात की और आज उसके बाद भगवान से पहला प्रश्न, यानी श्रीमद भगवदगीता का पहला प्रश्न अर्जुन ने पूछा है। इससे पहले अर्जुन ने भगवान से कोई प्रश्न नहीं किया था, और जब भगवान श्री कृष्ण ने वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना होने का आदेश दिया, फिर तो अर्जुन ने पूछा कि अगर वेदों से भी ऊपर उठना है तो क्या ऐसा कोई व्यक्ति है भी ऐसा अगर मुझे बनना है तो मुझे थोड़ा सा उदाहरण मिले, ताकि वो कैसे बोलता है, कैसे उठता है, कैसे चलता है, उसके विषय में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम प्रश्न पूछते हुए कहा, अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत वृजेत किम्। कि अर्जुन ने कहा, कृष्ण आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा कैसी है, वह किस तरह बैठता है और किस तरह चलता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस प्रश्न को सुना तो भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्नता से बोले और भगवान ने बोलना स्टार्ट किया। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान। प्रजहाति का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, बिल्कुल छोड़ देना। यदा, अब देखो यहाँ पर दो शब्द आए, यदा और तदा। सेकंड लफ्ज है यदा और सेकंड लास्ट लफ्ज है तदा, है ना। अब यदा का मतलब होता है जब और तदा का मतलब होता है तब, यानी कि जब जीव, भगवान ने पूछा, अर्जुन ने पूछा ना कि कैसा होता है, मैं उसके विषय में आप उसको थोड़ा डिस्क्राइब करो कैसा होता है, तो भगवान ने कहा जब वो ये तीन काम करेगा। आप देखो पहली लाइन में तीन चीजें भगवान ने आदेश दिया है, प्रजहाति मना छोड़ देता है, यदा मना जब, क्या क्या छोड़ देता है, कामान। कामान का मतलब होता है इंद्र तृप्ति की सारी इच्छाएं, जितनी भी इच्छाएं हैं आपके मन में, जितनी भी इच्छाएं को थोड़ी एक आध रह जाए भले, भगवान ने उस बात को क्लियर करते हुए सर्वान, देखो एक भी रह गई ना। यदि श्री रूपा जी कहते थे, अच्छा लगता है बहुत बोलने में भी, कि यदि एक चॉकलेट खाने की भी इच्छा रह जाएगी ना तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है सर्वान पार्थ, जितनी भी आपके हृदय में इच्छाएं हैं, भोग की जो इंद्रिय भोग की जो भी इच्छाएं हैं, जो कैसे, अब ये भगवान श्री कृष्ण क्लियर करते हैं, वो आती कैसे है। भगवान ने कहा मनोगतान, ये कोई आध्यात्मिक स्तर पर नहीं होती। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना कि भाई इसकी आत्मा, इसका हृदय कर रहा है, अभी आत्मा को कैसे सिखाएं, ऐसे बोलते हैं ना, आत्मा को कैसे तरसाएं। तो यहाँ भगवान साहब बता रहे हैं कि देखो ये इच्छा होती, एक आंटी है मेरे को बोलती थी कि मेरे को मछली इतनी अच्छी लगती खाने में, मैं बोलती हूँ हम आप इतनी बूढ़े हो गए हो, एकदम बूढ़ी हो गई हमारी आंटी है वो, तो मैं बोलती इतनी बूढ़ी हो गई हो आप मछली खाना छोड़ दो, अपराध लगता है भगवान, अब अंत समय अभी इतनी जिंदगी खाया। तो बोला मैं अपनी आत्मा को कैसे तरसाऊं, मेरी आत्मा उसमें पड़ी हुई है। तो यहाँ भगवान कहते नहीं बेटा, आत्मा नहीं पड़ती है, ये मनोगतान है, मन भौतिक है, आत्मा आध्यात्मिक है। मन की कोई भी इच्छा जो है वो आत्मा को टच नहीं कर रही होती है, आत्मा की इच्छा होती ही नहीं है कभी भी कोई भौतिक इच्छा, आत्मा कभी किसी भौतिक वस्तु से संतुष्ट हो ही नहीं सकती है। तो जो ये सोच रहे हैं कि आत्मा मेरी इस चीज में पड़ी हुई है, या मेरी आत्मा इस व्यक्ति से प्रेम करती है या विशेष वस्तु से प्रेम करती है, तो वो बेवकूफी है। आत्मा केवल परमात्मा के साथ अपना संबंध को जानती है और किसी को नहीं जानती है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उसकी आत्मा जब शरीर से निकल जाती है ना, तो किसी भौतिक वस्तु से उसका कोई भी अटैचमेंट नहीं रहता है। ये जो भौतिक वस्तु है और भौतिक वस्तु है और जो भौतिक व्यक्ति है ना, वो सिर्फ हमारे मन के साथ हमारा उनका अटैचमेंट होता है, क्योंकि मन भौतिक है और गुण है होते हैं उसमें, तो उस हिसाब से वो। लेकिन भगवान ने कहा, ये देखो भगवान ने क्लियर कर दिया कि मन से ही उत्पन्न होती है सारी प्लानिंग जो हम करते हैं ना, कि क्या करना है, जो भी सुबह से लेकर रात तक जो भी प्लानिंग करते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, इसके बाद मुझे ये करना है, उसके बाद इधर जाना है, ये कार्य आज, ये कार्य, ये सारी प्लानिंग मन की है। लेकिन ये सारी प्लानिंग्स क्या है, हमारी इच्छा है, मन इच्छा कर रहा है और हमारी बुद्धि प्लानिंग कर रही है। लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि को भगवत चेतना में स्थित कर दिया है। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जो है उसकी, वो परिवर्तित हो गई किसमें, सुप्रीम कॉन्शियसनेस में। तो फिर अब क्या होगा, स्थित हो गई है भगवत चेतना में। अगर भगवान को उसने कंप्लीट सरेंडर किया है तो मनोगतान की क्या आवश्यकता है, मन से विचार करने की, मन से प्लानिंग करने की क्या आवश्यकता है। देखो सरेंडर करना और चिंता करना या प्लानिंग करना दो अलग अलग बात है। अगर आपने किसी को सरेंडर कर दिया कि भाई तुम्हें जैसा अच्छा लगता है ऐसा करो, फिर प्लानिंग की कोई आवश्यकता नहीं। फिर क्या कहते हैं कृष्णा, आई हैव कंप्लीट ट्रस्ट दैट योर प्लान्स आर मोर बेटर देन माय ड्रीम्स। मेरी इच्छा जो है, मेरे ख्वाब जो है, मेरे सपनों से ज्यादा बेहतर तुम्हारी प्लानिंग है, क्योंकि मेरी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि वो भूत भविष्य और वर्तमान को समझ सके, लेकिन आप क्योंकि सब कुछ जानते हो इसलिए आपने जो मेरे लिए प्लानिंग की होगी वही मेरे लिए बेहतर होगी, वही मेरे लिए श्रेष्ठ होगी। अभी देखो अर्जुन ने पहले भगवान को क्या कहा, नयोत्स्य रहती गोविंदम, मैं तो लड़ाई नहीं करूंगा भाई, आप मुझे जो कुछ बता दो, जो बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं नयोत्स्यती गोविंदम, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। ये अर्जुन की अपनी प्लानिंग थी। पहले प्लानिंग करके आया ना, युद्ध की तैयारी करके गांडी हाथ में उठाया, शंख भी बजा दिया अपना, और देवदत्त नाम का शंख भी बजाया था, याद है हम लोगों ने पहले उसमें पढ़ा था चैप्टर में। बोला अभी लड़ाई कर रहा हूँ लेकिन सेंटर में लेकर चलो। भगवान ने सेंटर में लेकर गए रथ, और फिर देख के बोला नहीं बाबा मेरे को इनको मारना नहीं है, भले ये लोग मेरे को मार डालें, मैं बैठता हूँ आराम से चुप करके, ये सब आएंगे एक एक करके मेरे को मार डालेंगे तो मेरे लिए ज्यादा बेहतर है। न योत्स्यति गोविंदम, अपना निर्णय सुना है और बैठ गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब उसको पूरी श्रीमद् भगवद गीता पढ़ा दी, सुना दी ना पूरी, फिर क्या बोला 18.73, अत्यंत सुंदर। भगवान ने जब अर्जुन की बात सुनी होगी तब पता चला होगा कि हाँ इसको समझ में आ गई पूरी भगवद गीता मैंने बताई। अर्जुन ने कहा नस्तु मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तया। हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया और आपके अनुग्रह से मेरी स्मरण शक्ति वापस आ गई। स्मरण शक्ति कौन सी? ये स्मरण शक्ति कि मैं आत्मा हूँ और मेरा कर्तव्य केवल आपको प्रसन्न करके खुद को खुश करना है। डायरेक्ट से मैं अपनी खुशी, अपनी मर्जी, अपनी प्लानिंग से खुद को खुश नहीं कर सकता। अभी मुझे ये बात समझ में आ गई, मुझे याद आ गई। वास्तव में कृष्ण भावनामृत हमारे हृदय में पहले से ही है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं और से कृष्ण प्रेम ला के आपके हृदय में हमें डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं। आपके हृदय में कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावनामृत पहले से ही है। अब श्रील प्रभुपाद जी कहते थे अगर कृष्ण प्रेम पहले से हृदय में नहीं होता तो उन हिप्पियों को मैं प्रेम कहाँ से लाके देता, मैं तो खाली हाथ गया था वहां पर। श्रील प्रभुपाद जी खाली हाथ गए थे, कुछ भी नहीं लेकर गए, और बोला मैं वहां पर गया और इतने सारे हिप्पी अंग्रेज जो कि विषय वासना और इंद्रिय भोग में इतना ज्यादा बहुत ही मजबूती से जकड़े हुए थे और वो कृष्ण भावनामृत में प्रेरित हो गए। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है क्योंकि वो कृष्ण, मैंने क्या किया, खाली उनकी सुप्त कृष्ण भावनामृत को जगाया है। वो पहले से उनके हृदय में स्थित थी और जब जीव को ये पता चलता था, भगवान अर्जुन ने भी कितना अच्छा कहा कि आपकी कृपा से मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है, मुझे वो याद आ गया कि मुझे कृष्ण भावना भावित हो गया, अब मैं संशय रहता हूँ तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कार्य करने के लिए तैयार हूँ। तो यानी कि हम यहाँ पर स्थित प्रज्ञस्य के विषय में पढ़ रहे हैं और भगवान ने कहा प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मन से उत्पन्न हुई, मन से, मन की प्लानिंग, मन से जो भी बातें हैं उन सबको त्यागना है, छोड़ना है। और क्या करना है, अब मन की सारी प्लानिंग को छोड़कर बंदा क्या करेगा, हर कोई काम तो हम मन से कर रहे ना, तो मन की सारी प्लानिंग को छोड़कर क्या कर रहे, बस बैठ जाएगा कुछ नहीं करे। नहीं, भगवान ने कहा नहीं, आपको क्या करना है, आत्मन्येवात्मना तुष्टः, संतुष्टि आनंद तो आत्मा का लक्ष्य है और वो तो आपको प्राप्त करना है। अब वो तब प्राप्त होगा, हम क्या सोचते हैं संतुष्टि कैसे प्राप्त होगी, ये कोई कोई लोग प्लानिंग करते हैं ना, अभी इस एरिया में रह रहा हूं मैं तो एरिया चेंज करूंगा ना, अच्छे एरिया में जाऊंगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन अच्छे एरिया में जाके भी रहेगा क्या, करेगा क्या, वही आहार निद्रा भय मित्र। तो संतुष्टि संभव नहीं है, क्योंकि मनोगतान से तो भगवान ने कहा जो पैदा होने वाली सारी चीजें उसको तो आपको त्यागना है। वहां पर भी जाके मनोगता नहीं करेगा तो संतुष्टि प्राप्त होने वाली नहीं। कोई बोलता है ये मुल्क, ये जो कंट्री है ना, वो मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो मैं कंट्री छोड़ के मैं उल्लासनगर में जाके शिफ्ट हो जाऊंगा तो ज्यादा मेरे लिए भला है। तो वहां पर जाके भी करना क्या है, अगर वही आप करोगे जो मनोगतान यानी कि इंद्रिय भोग की इच्छाएं, उन वही करना है इसको, वही है। वो सोच रहा है कि एरिया चेंज करने से या सरकमस्टेंसेस के चेंज होने से मैं यही कार्य करके सुखी हो जाऊंगा, लेकिन भगवान बोलते नहीं, ऐसा नहीं होगा, कार्य चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने सोचने की गति चेंज, आज आप ये सोच रहे हो कि जब आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं तो तुष्ट हो जाओगे, लेकिन वास्तव में क्या, आत्मना तुष्ट है, क्योंकि आप आत्मा हो और आपको तुष्ट होने के लिए एक इटर्नल चीज चाहिए। उपनिषद कहता है न अल्पे सुखम, आप आत्मा हो, आप इटर्नल हो, इसलिए आपको ये अशाश्वत चीजें जो खत्म हो जाने वो सुख नहीं दे सकती। तो आत्मा जो है वो आत्मा में ही विशुद्ध जब हो जाती है ना, जब आत्मा विशुद्ध कब होती है, अभी क्या है, आत्मा पर मन की इच्छाओं का पर्दा पड़ा हुआ है, मन इच्छाएं कर रहा है, कामनाएं कर रहा है, और उसकी वजह से आत्मा का जो इटर्नल मकसद है ना, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, उसकी ओर आकर्षण उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो तुष्टि क्या होगी, जब आत्मा विशुद्ध मन, व आत्मना का मतलब होता है विशुद्ध मन, मन विशुद्ध हो जाएगा। मन अभी मलिन है क्योंकि उसमें भौतिक आसक्ति है, भौतिक कामनाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, जो कि हमें आत्मा की इटर्नल इच्छा यानी कि कृष्ण प्रेम को विकसित करने में डिस्टर्ब कर रही है। लेकिन विशुद्ध मन क्या होगा, जब मन में समस्त प्रजहाति यदा कामान, जितनी भी कामान है, जितने भी इच्छाएं हैं, उनको खत्म कर देंगे, सर्वान पार्थ, सारी इच्छाओं को खत्म कर देंगे, और फिर क्या होगा, आत्मनैव आत्मना तुष्ट है। और जब मन विशुद्ध मन से आत्मा रियल, आत्मा के रियल स्टेज पर जब आएंगे ना, आत्मा की शुद्ध अवस्था में जब आएंगे, शुद्ध अवस्था क्या है, शुद्ध अवस्था ये है कि मैं भोक्ता नहीं हूं। आत्मा को जब ये रियलाइज हो जाए, जब जीव को ये रियलाइज होने लगे कि मैं भोक्ता नहीं हूं, भोक्ता कौन है, वो शास्त्र बताता है, गीता बताती है 5:29 में कि भोक्ता कौन है। भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। देखो तुम्हें शांति चाहिए ना, और शांति कैसे प्राप्त होगी, भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मुझे समस्त यज्ञों तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों सर्वलोक महेश्वरम, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर, सुहृदम सर्वभूतानाम, सुहृदम कहते हैं सारे जीवों का उपकारी, तब पर स्नेह करने वाला, सब पर दया करने वाला, सबका हितैषी जानकर, मेरे भावना अमृत में पूर्ण पुरुष जो हो जाता है, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जो ये जान लेता है कि मैं ही सब समस्त चीजों का भोक्ता हूँ, समस्त लोगों का महेश्वर हूँ, सबका सुहृद हूँ, सबका हितैषी हूँ, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, उसी को शांति प्राप्त होगी। हम क्या सोचते हैं कि हम कैसे शांति प्राप्त करेंगे खुद को संतुष्ट करके, लेकिन भगवान बोलते इससे नहीं होगा, आप ये जानो मुझे संतुष्ट करोगे तो तुष्ट हो जाओगे। इसी बात को यहाँ पर बताया आत्मन्ये वात्मना तुष्टः, कि जब आप जान लोगे कि मैं तो दास हूँ, मैं भोग्य हूँ। वास्तव में दो चीजें होती है, एक भोग्य होता है, एक भोक्ता होता है। जब भोग्य आनंद प्राप्त करना चाहता है ना, वो भोक्ता को संतुष्ट करके आनंद प्राप्त करता है, ठीक है। और भोक्ता जो है, जब वो संतुष्ट हो जाता है ना, तो भोग्य वस्तु स्वयं ही आनंदित हो रही होती है। बहुत ही हाई क्लास की बात है। लेकिन यदि भोग्य वस्तु ये सोचने लगे कि मैं भोक्ता को छोड़ के खुद से संतुष्ट हो जाऊं, तो वो नहीं हो सकता। इसलिए इस बात को यहाँ पर बताया आत्मन्ये वात्मना तुष्टः, और उसको भगवान ने कहा स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। जब वो इस स्टेज पे पहुंच जाता है ना, स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, उसको क्या कहते हैं, स्थित प्रज्ञ। अर्जुन ने पूछा था स्थित प्रज्ञा किसको बोलते, तो भगवान डेमो दे रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई कैसा होता है वो, जब मनुष्य मनोरथ से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, फिर उसके मन में कोई इच्छा नहीं रहती, उसकी केवल एक ही इच्छा होती है कि मैं कैसे भगवान की इच्छा को पूरा करूं। उसकी सारी इच्छाएं जो है वो सुप्रीम सुप्रीम भगवान की है ना इच्छाओं में परिवर्तित हो जाती है, अपनी सारी आवश्यकताओं को। अब यहाँ पर एक प्रश्न तो फिर भी उठता है कि आत्मा, हम लोग ये मानने के लिए तैयार है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े कि हम अपने शरीर को ही भूल जाएं। अब क्योंकि हम शरीर नहीं है, लेकिन ये शरीर हमारा तो है ना, और भगवान ने दिया है, तो इसके लिए प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना इस शरीर को रखने के लिए। अब जाहिर सी बात है प्रैक्टिकल तो बनना पड़ेगा, तो इस शरीर के लिए प्लानिंग कैसे करें। अब देखो क्योंकि हम सरेंडर हैं, तो सरेंडर का मतलब होता है जैसे जिसके आप सरेंडर हो ना, जिसके शरणागति हो, उसने जो प्लानिंग किया आप उसको उसके हिसाब से आपको चलना। अब शरीर को मतलब कायम रखने के लिए, शरीर को चलाने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए, निद्रा चाहिए, घर चाहिए, है ना, ये सब चाहिए। अब भोजन खाना आवश्यक है, लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि क्या बनाएं, कैसे खाएं, हमारे हमें क्या अच्छा लगता है इसके विषय में, तो ये क्या होगा सर्व, ये फिर स्थित प्रज्ञा नहीं हो जाएगा, वो तो कामन हो गया। अब ये सोचना पड़ेगा कि जिसको मैंने सरेंडर किया वो क्या चाहता है कि मैं क्या खाऊं, तो बताएगा, खुद बताएगा ना। 9.27 में कहते हैं पत्रम पुष्पम पलम दोयम यो मे भक्त्या प्रयस्यति तदहं भक्त्युपहर्तम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम और भक्ति के साथ पत्र पुष्प फल जल जो कुछ भी मुझे अर्पण करता है मैं उसे प्रीति सहित स्वीकार करता हूँ। और भगवान पहले बता देंगे 3.13 में, देखो सुन लो, तुम अपने लिए जो जो चीज पकाओगे ना अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, यानी ये जो इसी बात को जो है परजहाति यदा कामान, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पकाओगे ना, तो भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टाशन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्, के यो अर्पण करके खाते हैं वो सारे अपराधों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए पका रहे हैं भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारण, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिश को भोग तृप्ति भोग की इच्छा को तृप्त करने के लिए जो पकाते हैं वो क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं भुंजते ते त्वगम पापा, उनको तो नरक में भेजूंगा, पाप कर रहे हैं ना वो तो मुझे, तो भगवान ने जैसा बोला उस हिसाब से। अब शरीर, अब अगर हम आत्मा है तो आत्मा को तो भोजन के विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं, लेकिन भगवान कहते नहीं तुम्हें अपने शरीर को सही रखने के लिए तो भोजन चाहिए होगा, तो जैसे मैं बोलता हूँ ऐसे खाओ। फिर भगवान कहते हैं सोना है, तुम्हें जरूरी सोना है, क्योंकि शरीर अगर सोएगा नहीं, विश्राम नहीं करेगा, तो फिर भक्ति नहीं कर सकेंगे ना, सुबह उठ के मंगल आरती भी नहीं कर सकेंगे, जब करेंगे तो माला करेंगे ना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और माला भी हाथ से गिर जाएगी। तो भगवान कहते नहीं ऐसा नहीं करना, सोना चाहिए तुमको, कब सोना चाहिए वो भगवान बताते हैं यहाँ पर, कि भगवान कहते हैं 2.69 में या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानां सा निशा पश्यतो मुने, जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्मसंयमी के लिए जागने का समय है, और जो जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरक्षण मुनि के लिए रात्रि है। यानी कि आप अगर स्थित प्रज्ञ बन रहे हो तो आपको ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले उठना पड़ेगा भगवान को प्रसन्न करने के लिए। आपका जीवन इंद्र तृप्ति के लिए नहीं होगा, फिर आपका जीवन भगवान को प्रसन्न करने के लिए होगा। क्या खाना है, कैसे बात करनी है, भगवान श्री कृष्ण ने कल बताया 10.9 में मच्छिता मत कथा प्राण बोधयंत परस्पर कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमणती च, आप बगैर बोले नहीं रह सकते, जीव बगैर बोले तो रह नहीं सकता, एक आध घंटे खाए बगैर रह जाएगा एक आध दिन तक, लेकिन बोले बगैर नहीं रह सकते। तो बोले बोलो, तुम मैं बता रहा हूँ कैसे बोलो, मेरे विषय में बोलो, मेरी बात करो, मेरे विषय में बात करो, मेरे नाम का संकीर्तन करो, श्रवण किए बगैर आप नहीं रह सकते, आप बगैर श्रवण किए नहीं रह सकते। तो भगवान कहते हैं आपको सुनना चाहिए, मेरे कथाओं के विषय में बोलना चाहिए, मेरे मेरे नाम के विषय में, मेरी गुण लीलाओं के विषय में, यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि इंद्रियों को आर्टिफिशियल ढंग से बंधन में नहीं छोड़ना बांध देना, बल्कि सरेंडर किया तो जो भगवान चाहते हैं उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना, अपनी इच्छाएं नहीं, जो कामान है ना मन से जो कामनाएं उत्पन्न होती है वो नहीं उत्पन्न करनी है और केवल भगवान को प्रसन्न। और ये हमें कैसे पता चलेगा? शास्त्र से पता चलेगा कि भगवान क्या चाहते, गुरु बताएंगे भगवान क्या चाहते, साधु बताएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हम सदैव गुरु साधु और शास्त्र के आश्रय में रहें, और जो मतलब हमें भगवान कहते हैं वो हमारे भगवान के आदेश जो है वो हमें इसी से पता चलते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? श्रवण करना। जब हम श्रवण करेंगे ना तो फिर हमें पता चलेगा भगवान क्या चाहते हैं। जब हम श्रवण करेंगे तो शास्त्र के आदेश पता चलेंगे। अगर श्रवण करना छोड़ देंगे ना तो फिर हमारा जो मन है वो फिर से प्लानिंग करना शुरू कर देगा। इसे जरूरी है कि कंटिन्यूस हम श्रीमद् भगवद गीता को श्रवण करते रहें। और भगवान अब यहाँ पर ये बात आई गई है कि अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा में परिवर्तित करना, तो मैं आपको बताती चलूं कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अपनी एक इच्छा प्रकट करते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे भक्त जो है, सबसे बड़ी मेरी इच्छा ये है कि मैंने जो ये ज्ञान अभी प्रस्तुत किया है ना, 18.68 में भगवान ने कहा या इमं परमं गुह्यं मद् भक्तेष्व विधास्यते भक्तिमयि परं कृत्वा मामे वैशत्य संशय, कि जो मैंने अभी बताया है वो जो व्यक्ति भक्तों को यहाँ पर हम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आ जाएगा। भगवान कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मेरे इस दिव्य ज्ञान का प्रचार करता है, मुझे बहुत। भगवान आगे तो यहाँ तक कह देते हैं 18.69 में, न तस्मान मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यतरो अन्य प्रियतरो भुवि, कि इस संसार में उसकी उपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना ही कभी कोई होगा। तो हम सबको ये भगवान का प्रिय होने का प्रयत्न करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता को सुनो और संसार में वितरण करो, यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी भक्ति। पहले श्रवण करो, समझने का प्रयास करो, समझ में आ जाए तो बताओ। ये है भगवान श्री कृष्ण को अच्छा लगता है। और पता है क्या, जब हम किसी को बताते हैं तो क्योंकि हमें उदाहरण पेश करना होता है, हमें उनके सामने उदाहरण बन के आना होता, तो फिर बाकी जो अपवित्रता है ना हृदय की, वो अभी हम ये सोचे कि सबसे पहले हमको पवित्र होना है उसके बाद सुनना है उसके बाद, नहीं, सुनो साथ साथ में, कोशिश करते रहो जो सुन रहे हैं उसको हम प्रैक्टिकल करें। और जब उससे ज्यादा प्रैक्टिकल अच्छे तरीके से जब होगा, जब आप उसको बताना शुरू करोगे, फिर क्या है, फिर तो क्योंकि आप अपनी इच्छा करोगे, खुद भी अगर मनोगतान में पड़े हुए होगे फिर तो आपको शर्म आएगी ना कि मैं तो दूसरों को कह रहा हूँ अपने मन की कोई इच्छा करो ही नहीं, भगवान की इच्छा में संतुष्ट हो और मैं स्वयं कैसे इच्छा कर सकता हूँ। तो खुद ब खुद हो जाएगा, प्रैक्टिकल खुद ब खुद होता जाएगा। आध्यात्मिक का यही तो एक गुण है कि आप श्रवण करो, कीर्तन करो और आगे, क्योंकि हम प्रैक्टिकल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा हृदय गंदा है। ये बात समझ लेनी है कि हृदय में इतनी मलिनता है, भौतिक भोग इतने ज्यादा है, तो फिर हम जो है ना वो कर नहीं पा रहे, प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे। लेकिन जैसे जैसे हम सुनते जाते भगवान का, जो भगवान भगवत की जो भक्ति है ना, श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 2 टेक्स्ट नंबर 17, इतना मजे का श्लोक है, आप सुनोगे ना आपको अच्छा लगेगा। भगवान कहते हैं, वेद व्यास जी कहते हैं, श्रवताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंथस्तो ह्य भद्राणी विधुनोति सुहृत्तसाम। यानी श्रवताम स्वकथाम कृष्ण, खाली भगवान की कथा को सुनने की बात की है बस, श्रवताम, अगर आप सुनोगे ना भगवान की कथा, पुण्य श्रवण कीर्तन, इन पवित्र कीर्तन को, इस पवित्र कथाओं को जिसने खाली सुनने के लिए अपनी रुचि विकसित कर ली, जिसको खाली भगवान की कथा सुनने में ही आनंद आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, क्या अपने जीवन में प्रैक्टिकल कर रहा है, वो बहुत अलग बात है। लेकिन खाली श्रवण करने में आपने यदि अपनी रुचि विकसित कर लिए तो हृदयंतस्थो ह्य भद्राणी, फिर आपको आगे करने की जरूरत नहीं है। ह्य भद्राणी, जितने भी अभद्र है आपके हृदय के अंदर, जितनी मलिनता है, जितनी गंदगी है, विधुनोति सुहृत्तसाम। विधुनोति का क्या मतलब है? जैसे हम धोते हैं ना, साफ करते हैं किसी चीज को ब्रश लगा के, विदनोती उसको साफ करती है। क्या वो कथा जब हृदय कानों के अंदर, हृदय कानों से हृदय के अंदर जाती है ना, भगवान के मुखारविंद से निकले हुए पवित्र शब्द, भगवान की कथा, भगवान की लीला गुण नाम, ये सब जब अंदर जाता है तो आपके हृदय को स्वच्छ कर देती, आपके हृदय के अंदर से सारी गंदगी को खत्म कर देती। तो सबसे पहला स्टेप भक्ति का क्या है, भगवान के विषय में श्रवण करना, जो आप सब कर रहे हो। आप सबका बहुत बहुत भाग्य, सौभाग्य है कि आपको भगवान श्री कृष्ण की कथा, भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनने में इतनी इतना प्रेम और आसक्ति है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीमद् भागवतम में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या कृष्ण भगवत भक्ति में होता है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो बहुत कठिन तपस्याएं करते हैं सद्गुण अर्जित करने के लिए, वो भगवत भक्त को तो ऐसे ही मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होता है, यानी सदैव भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए चेष्टा करता रहता है, अपने कार्यकलापों में कृष्ण को ही सेंटर में रखता है, तो उसके अंदर सारे सद्गुण खुद ही आ जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति आध्यात्म में स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। कितना सुंदर यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने इस श्लोक को डिस्क्राइब किया है कि मनोधर्म पर जब तक आप आश्रित रहोगे ना, भगवान ने क्यों बोला है कि इन सबको त्यागो, क्योंकि ऐसा अगर करते रहेंगे, मनोधर्म के मनोगतान के हिसाब से आप चलते रहोगे, अपनी इच्छाओं को पूरा करते रहोगे, तो आपके अंदर कभी कोई सद्गुण आ ही नहीं सकता। सद्गुण किसके अंदर आते हैं, जब वो अपनी मनोकामनाओं को, जितनी मन की जितनी इच्छा है, ये पंडितों ने जो बड़े बड़े ना, उन्होंने हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ। सब बोलते तुम्हारी मनोकामना पूरी हो, तुम्हारी मनो इच्छा पूरी हो। मनोरथ को पूरा नहीं करना है भाई, मनोरथ को समाप्त करना है। भगवान ने तो कहा प्रजहाति मनोगतानि, मन से उत्पन्न हुई सारी चीजें उनको खत्म करना है। और यदि पूरे होते जाएंगे ना, पूरे होते जाएंगे और हमारी इच्छाएं पूरी होती जाएंगी, घी डालते जाएंगे तो अग्नि भड़कती जाएगी, दूसरे भी उत्पन्न होंगे। तो कोई बोले ना मनोकामना पूरी हो, तो बोला मुझे आशीर्वाद दो कि मनोकामना समाप्त हो जाए। अब मनोकामनाओं को पूरा करते 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 न जाने कितने करोड़ों जीवन बर्बाद कर दिए। आज मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी इच्छाएं समाप्त करके कृष्ण की इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकूं, तो मेरी इच्छाएं समाप्त हो जाने का मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु। और शिला प्रभुपाद जी कहते, जब तक मनोगति से काम करते रहोगे, मनोरथ को मनोधर्म के पर आश्रित रहोगे, तब तक आपके अंदर कोई क्वालिटीज नहीं आएंगी। फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्याग देना चाहिए। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं है। कृत्रिम साधन यानी कि जबरदस्ती अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को, विषय वासनाओं को रोक नहीं सकते, किंतु यदि कोई कृष्ण भावना मृत में लगा होता है तो सारी विषय वासना स्वतः ही बिना किसी प्रयास के दब जाती है, क्योंकि हमारी हम रोक नहीं रहे, हम डाइवर्ट कर रहे हैं। अपनी जितनी भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है ना, अब सुनना है तो भगवान का नाम सुनो, जैसे हम अभी पढ़ रहे थे, तो सब ये सब जब डाइवर्ट की जाती है ना, तो खुद ब खुद बगैर किसी प्रयास के हमारी अपनी मन की इच्छाएं जो है वो दब जाती है। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। यदि हम भक्ति करेंगे भगवान की, तो फिर दिव्य चेतना में स्थित हो जाना हमारे लिए इजी हो जाएगा। कृष्ण की भक्ति करना बहुत आसान है, खाली भगवान के नाम की कथा सुनो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, ये भक्ति की पहली स्टेज है और एंड तक यही करना है। ऐसा नहीं कि इसके बाद और कुछ करना है, इसके बाद जो सारे प्रोसेस है ना वो ऑटोमेटिकली होते जाएंगे। हृदय की गंदगी साफ होगी और निष्ठा, आसक्ति, रुचि, ये सब प्रेम, वो सब खुद होगा। आपको खाली दो काम करने, श्रवण करना है, कीर्तन करना है, भगवान के पवित्र नाम का जप करना है और श्रवण करना है भगवान की कथा को, बस। यहाँ तक है, आपको मुश्किल कुछ भी करने के लिए नहीं कहा, मुश्किल सारे काम वो भगवान करेगा। जो हृदय में जाएगा ना नाम रूप में, जब हृदय के अंदर जाएगा ना, तो चैतन्य महाप्रभु करते, वो बेचारे का काम है अंदर जाके सेतु दर्पण मार्जनम, सारे मुश्किल मुश्किल काम है ना भगवान को सौंपती है। और आसान काम करना है अपने को, इतना आसान काम करना है, कथा सुनना कितना आसान है। अभी देखो बोलना तो बिचारी को पढ़ना पड़ता है, दूसरी बोल रही होती है उसको, सुनना कितना इजी है, वैसे कान खुले होते हैं, ऐसा नहीं है कान का ढक्कन खोलो उसके अंदर लफ्ज डालो, खुद ही जा रहे होते हैं। और बोल कीर्तन करना भी कितना मजे का है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। तो बस ये दो काम हमको घर में, बाकी सारे काम वो महामंत्र अंदर जाएगा ना, सारी ड्यूटीज उसकी हैं, अंदर से गंदगी को साफ करेगा, इच्छाओं को खत्म करेगा, मलिनता को साफ करेगा, हमें भगवान तक पहुंचा देगा। हमें खाली उस नाम को कस के पकड़ना है, इस श्रवण और कीर्तन की जो डोरियां है ना, ये दोनों कस के पकड़ना है। हमारे हृदय के अंदर जो भक्ति का बीज है ना, वो खुद ब खुद अंकुरित होता जाएगा और भगवान के श्री चरणों तक पहुंच जाएगा। हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब बड़ा हुआ, जैसे छोटे बच्चे कैसे बड़े हो जाते हैं हमारी आंखों के देखते देखते। जब ये दो चीजें उसको अच्छी मात्रा में मिलनी चाहिए, कभी भी कथा सुनने का और कीर्तन करने का मौका नहीं गंवाना चाहिए। अच्छा, तो शीला प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा होता है तो सारी विषय वासनाएं स्वतः ही बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा यानी महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना नहीं भटक सकती, क्योंकि जब हम अपने आप को भगवान का दास मानते हैं तो भौतिक विषय वासना है, वो खुद डर रही होती है। भौतिक माया जो है वो आप तक आपको तब तक आपके ऊपर कर सकती आक्रमण जब तक आप भगवान को पूरी तरह से सरेंडर नहीं करते। भगवान कहते हैं 7.14 में, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंति ते। प्रकृति के तीन गुणों वाली मेरी दैवी शक्ति को पार करना बहुत कठिन है, मेरी माया है, ये सब माया ही तो है जो हमें भौतिक आकर्षण उत्पन्न करा रही। तो भगवान ने बोला इसको तो पार करना बहुत कठिन है, लेकिन सरल उपाय भी साथ साथ बता दिया, मामे वये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंति ते, मेरी शरण में आ जाओ, केवल मेरे ही विषय में सुनो और मेरे नाम का संकीर्तन करो। यही शरण में आना है, इसी को बोलते हैं भगवान की शरण में आना। और भगवान कहते हैं यदि ऐसा करोगे माया में तम तरंति ते। और जब हम भगवान के सरेंडर हो जाते हैं, भगवान की शरण में आ जाते हैं, अपने आप को भगवान का दास मान लेते हैं, तब श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। प्रसन्न ही तो रहना ना, अपनी मनोगतान से तो प्रसन्न होने के बदले में और भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। भगवान ने कहा अगर तुष्ट रहना है तो अपने आप को मेरा दास समझो, मेरा सेवक समझो। और इस तरह से जब हम सदैव अपने आप को भगवान का सेवक मानेंगे तो सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहेंगे। ये भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होने का तरीका बताया, लेकिन जीव इतना बेवकूफ है बोलता भगवान तुम भले जो भी खेते रहो, मैं तो वही करूंगा जो मेरा मन करेगा। सुनो सबकी, करो मन की, लेकिन जब तक हम मन की करते रहेंगे तब तक संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। जब कृष्ण को सरेंडर करेंगे, कृष्ण की शरण में आएंगे, कृष्ण के विषय में सुनेंगे और कृष्ण के नाम का कीर्तन करेंगे तभी संतुष्टि प्राप्त होगी। तो जो अकलमंद है, भगवान कहते हैं चेतन जो यज्ञ संकीर्तन प्राय ही यजंते ही सुमेधसा, ये बात को सिर्फ वही समझ सकते हैं जिसके पास बहुत ज्यादा अक्ल हो। भगवान की नजर में अक्लमंद वही है जो उनकी शरण में जाता है, ना कि अपनी अक्ल से अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।